جن کے ہونٹوں پر بنسی براج رہی ہے, ادھروں پر اتنا سندر ان کا سوندریہ ہے, ان کے ایسے گن ہیں, اور آج تک بھی میں روز ان کو سپنے میں دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں, ان سے بات چیت ہماری ہوتی ہے, تو کیا سمجھو کچھ بھی پریم نہیں. جانتے ایو جانتو نہ میں بھکت اپنو من سو بپ سو بھم اوگو. جو کہتے ہیں جی کرشن کو میں نے دیکھ لیا, کرشن کا سب تتو سمجھ لیا, وہ کچھ نہیں سمجھے. میں چاروں ویدوں کو پرکٹ کرنے والا جو برہما ہوں, آٹھ نیتروں سے دیکھتا ہوں, چار مستک سے وچار کرتا ہوں, میں نے تو کچھ نہیں سمجھا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں, وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, یہی بھکتی کا وچار ہے. اس لیے یہ گوپیاں مہا بھاؤ کی اوستھا میں ہیں, اس لیے یہ کریں گے کرشن میں تو ہمارا پریم نہیں ہوا. ارے دیکھو تو کرشنم نریکش بنے تو سوروپ شیلم ستواد تت دیڑ ویوکت گیتم ددیا بیمان گتیا سمرنن سوارا بھرشت پسون کبرا مبہور بے لگیا. پہلے ہرنیوں کے لیے کہا, ہرنیوں کے لیے کہہ رہے ہیں. ارے دیکھو تو یہ ہرن ہو کر کے دھنیا کو موڑھ مت آیو. کل اس کی میں نے ویاخیا تھوڑی سی کی تھی, سنکھیپ میں بتلاؤں گا پورا اتنا نہیں, تو ایک شلوک میں ہی ایک دو دن تین تین لگ جائے گی. خوب سنکھیپ میں سوتر کے روپ میں بتلا رہا ہوں, شاید شبھانند برہمچاری جی نے بھی بتلایا ہوگا. کہتے ہیں کرشنم نریکش بنی تو سوروپ شیلم. دیکھا بھائی دھرنیوں جیسا ہمارا سوبھاگیہ نہیں ہوگا, یہ سمبھو پر ان کے سامنے جا کر کے کرشن کے مکھار بندو کو دے کر کے پرنے کی بھکشا مانگوں گی. اسے جنم جنمانتر میں ہرن ہو کر کے ہی جنم, یہ سمبھو پر نہیں. ہم نے تو ایسا کوئی سکرتی نہیں کیا, ایسا کوئی کاریہ نہیں کیا. اتنے میں دیکھا آکاش میں ویمان سب چل رہے, بھاو نیتر سے دیکھ رہی ہے. گوپیوں کا سنکلپ کبھی بھی متھیا نہیں ہوتا ہے, ارے سادھارن پرشوں کا نہیں ہوتا ہے, بھکتوں کا. کرشن تو ستیہ سنکلپ ہے نا, اور گوپیاں کرشن ہی سوروپ ہیں. برہم سنگیتا میں بتلایا نہیں گیا تابھی یہ نج روپ تیا کلا, نج روپ تیا. اس لیے گوپیاں ان کی نج روپ ہے, تو ان کا سنکلپ کیسے برتھا ہوگا. اس لیے جو بھی سنکلپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک, وہ ستیہ ہے, پرم ستیہ ہے. دیکھا جی آکاش میں چاروں طرف میں دیتاؤں بھیمان میں اور ان کی پتنیاں بھیمانوں میں چڑھ کر کے کرشن کی بیڑو گیت کو سن کر کے کرشنم نرچ بنتو سوروپ شیلم. دیکھا جی کرشن کو کیسے دیکھا, بنتو سو. آج بنتاؤں کا اتسو ہو رہا ہے, بیچ میں کرشن بنسی بجا رہے ہیں, اور اوپر سے ان کو دیکھ کر کے ویمان سے وہ پشپ برسا کر رہے ہیں دیوتا لوگ. کنتو دیوتاؤں کا وہ سوبھاگیہ نہیں ہے جو ان کی پتنیوں کا سوبھاگیہ ہے. اجے یہ کیسے, ارے ایسے جیسے جگہ پتنیوں کا جو سوبھاگیہ تھا ان کے پتیوں کو یہ نہیں ملا. ملا کیا؟ نہیں ملا. ناگ پتنیوں کو جو سوبھاگیہ ملا تھا اس کے پتی کالی کو وہ سوبھاگیہ رہا؟ نہیں رہا. اسی طرح سے بنی تو سوروپ شیلم, پتی لوگوں نے دیکھا اور سادھارن روپ میں دیکھا کنتو ایسا سندر روپ نہیں دیکھا تھا. بنسی بھی ان کے کانوں میں گئی یا نہیں گئی, کرشن کو گوچارن کرتے ہوئے تھوڑا سا دیکھا جھلک میں. ان کی بنسی کی نناد بیڑوں کا ناد ان کے کانوں میں نہیں گیا, کنتو کن کے کانوں میں گیا ہے؟ وہ آئے کس لیے تھے؟ وہ نہیں آتے, ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا. وہ تو اپنی پتنیوں کے کہنے سے ویمان کو لے کر کے ان کو دکھلانے کے لیے لے آئے تھے, کنتو ان کو بھکتی نہیں تھی, کنتو ان کی بھکتی تھی. تو ان لوگوں نے تو دیکھا نہیں, وہ مورچھت نہیں ہوئے, कृष्ण का बेनीनाद भी उनके कानों में नहीं गया देवताओं के। चित्रकेतु उपाख्यान से देखो ना, आयना है, चित्रकेतु महाराज देख रहे कि इंद्र को हुआ, इंद्र ने भगवान का की भक्ति मांगी, जैसा कि चित्रकेतु महाराज ने वृत्रासुर होकर के जो भक्ति मांगी, अजात पक्षामी ओ मातरम खगा, कहा उन्होंने, अरे दुर्भागा इंद्र, उनको कहा दुर्भागा इंद्र। भगवान से जब मिलेंगे तो कहेंगे बामन देव हमारा यह जो स्वर्ग राज्य है इसको सुरक्षित रखिए, भक्ति नहीं मांगी। और कहां इनको देखिए, इसलिए देवताओं को वो चीज सौभाग्य नहीं है, वो भक्ति नहीं है जो इनको है। इसलिए बलितोत्सव रूप शीलम, बनिताओं का उत्सव, बीच में कृष्ण है, उनको देखा, वेणुनाद करते हुए देखा, और देखा क्या जी, गोपियों के साथ में विलास कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कभी उनके पैरों के जो छिटक जाते हैं ऊपर उसको भी बांध रहे हैं। कृष्ण का यह देख करके और क्या देखा, ये तो उनका भाव देखा, विलास देखा, और रूप कैसा रूप, श्री जगत को आकर्षण करने वाला कृष्ण का रूप देखा, जिस असंभव ऐसा रूप न हुआ है न होगा, नारायण का भी रूप नहीं है, श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस, श्यामस्य बाम्बुज बद्धतनुं कदाहं स्वाम इंदिरा बिरल रूप भराम भजाम, श्यामस्य, श्याम का कैसा रूप है, नारायण को भी मुग्ध, लक्ष्मी के जो कांत हैं उनको भी मुग्ध करने वाला रूप है, वो भी मुग्ध हो जाते हैं ऐसा उनका। और उसमें में मूल महालक्ष्मी स्वरूपा सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका जी को वाम अंगों में रख करके आलिंगन कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, वो तो त्रिजगत आकर्षी वो रूप है, देवियों ने देखा, गोपियां कर रही हैं भाव नेत्र से ये देख रही हैं, ऐसा देखते ही उनकी कबरी खुल गई, एकदम मुग्ध हो गई, कपड़े खिसक गए और देखते देखते अपने पतियों की गोद में गिर पड़े, होश नहीं रहा। तो कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सव रूप शीलम, शीलम माने क्या, यहां पर शील, शीलन शब्द भी, शील भी बहुत गूढ़ रहस्य को प्रकाश करता है, कहीं भी जागती कोई काम नहीं, ऐसा दोनों का, गोपियों का भी शील और कृष्ण का भी, अप्राकृत राज्य है ना, कोई भी प्राकृत विषय उनको टच नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, इस दर्शन को भी, इस दृश्य को भी दर्शन करना सबके लिए सौभाग्य की बात नहीं है, ये तो गोपियों के लिए ही आस्वादनीय है, उन्हीं के लिए है, उद्धव भी नहीं देख सकते, नारद जी के लिए संभव नहीं है, कोई भी पुरुष रूप में रहने वाला नहीं हो सकता, इसलिए लोभ हुआ, शंकर जी तो बन गए गोपी, पुरुष उसमें जा ही नहीं सकता, इस स्त्रियों को इस भाव वाली जो सिद्धि लाभ किया है प्रेम से, जो पुरुष लोग हैं उनका भी भाव वही हो गया, गोपियों का जैसा भाव और गोपी जैसी होकर के कृष्ण की लीला में सम्मिलित हो सकती हैं या देख सकती हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए बंसी वादन के समय में कोई भी माताएं नहीं आई, कोई भी पुरुष नहीं आया, सखा लोग तक वहां पर प्रवेश नहीं कर सके, उनकी सेवा में राधा कृष्ण की किशोर किशोरी जी का किसी पुरुष का कोई भी अधिकार नहीं, बहुत दूर से कुछ सुबल इत्यादि का कुछ है, मधुमंगल का कुछ है, किंतु लीलाओं के समय में नहीं। इसलिए ये देवियां ने देखा और देख करके मुग्ध होकर के उनके गिर गई अपने पतियों की गोद में। कृष्णम निरीक्ष बनितोत्सव रूप शीलम सुत्वाच तत् पणित बेण विविक्त गीतम आरुह न दिव्यो विमान गतय स्मरणानुसारा, एकदम काम में मुझ, काम मैंने गोपियों का प्रेम, जो काम है वही प्रेम है, एकदम मुग्ध होकर के ऊपर गई। ओह देखो तो इनका कितना सौभाग्य है, इन देवताओं की पत्नियों को, देवियों का, अरे पति के गोद में वो गिर गई और पति लोग कह रहे हैं अहो इसका कितना सौभाग्य। हम इनके भावों को तो स्पर्श भी नहीं कर सके, कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं। और अपने पतियों के साथ में कृष्ण का यह दर्शन करने के लिए आई, पतियों को दर्शन नहीं हुआ इनको दर्शन हुआ, कितना इनका सौभाग्य है। सखी बतलाओ तो इन्होंने कैसी तपस्या की थी, अब हम ही ऐसी तपस्या करके दूसरे जन्म में ऐसी देवियों के रूप में हम लोग जन्म ग्रहण कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अभी हमारे पति लोग अपने साथ में लेकर के कृष्ण के पास में जाएंगे, कहिए चलो चलो फिर जरा देखाएं करेंगे। अभी देखो ना, अभी अभी जब पीछे वर्णन आएगा कहां जा रही है, टांग तोड़ देंगे, खबरदार यदि घर से निकली तो उसने हां ना ही कुछ कहा और निकल करके चलने लगी, जबरदस्ती पकड़ करके घरों में बंद कर दिए, बंद करके ताला दे करके लठिया लेकर वहीं पर खड़ा हो गया, देखे जे कैसे निकलती है। और ये देखो जे कैसे मैं निकलती हूं, निकल गई ना, वो क्या है, बिरह ताप धुता शुभा, कैसा सुंदर, जितना उनका शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो गया। जब तक हमारे जीवन में शुभ और अशुभ रहेगा, जागतिक पुण्य और पाप रहेंगे, ये साधक भी कृष्ण को नहीं आगे भजन कर सकता है। तो इन सिद्धों की तो बात ही क्या है, किंतु भागवत में तो ये लिखा, उनका जो शुभ था न, उनका जो अशुभ था वो पाप से द्रवित होकर के समाप्त हो गया, और जो शुभ था उन्होंने आंखों के माध्यम से हृदय में कृष्ण को लेकर के जो आलिंगन किया उसे उनका जितना शुभ था वो खत्म हो गया। तो अशुभ और शुभ क्या है, साधकोचित यहां पर मत समझना, वहां पर बहुत ऊंचा भाव है। गोपियां का अशुभ क्या है, जो कृष्ण से मिलन में जो बाधा हो रही है अशुभ, ये दूर हो गया, क्षीण हो गया उन गोपियों को, क्यों, पूर्व जन्म में उन्होंने साधन किया, भावावस्था तक प्राप्त किया, इस जन्म में अभी प्रेम नहीं मिला। अब वो परिपक्व प्रेम कैसे होगा भावावस्था से, इसलिए गोपी गृह में जोग मैंने उनको जन्म दे दिया, और जन्म देकर के नित्य सिद्धाओं से थोड़ा सा मिला दिया, कृष्ण की इन कथाओं को सुनने का सुयोग हुआ, गोपी तो हो गई, किंतु अभी पतियों के साथ में संबंध है। पति और घर के लोग बड़ा प्यार करते हैं, एक बेटा भी घर में हो गया, किंतु कृष्ण में पूर्व प्राग होने से और सिद्धाओं के कुछ संग होने से कृष्ण के प्रति तो खुद तीव्र मिलन की आकांक्षा तो हो गई। पूर्व जन्म में जो सिद्ध नहीं था वो भी सिद्ध होने लग गया, किंतु थोड़ा सा बाकी रह गया था, वही बाकी था, सब लोगों का उसके प्रति प्रेम ये भी जल करके खाक हो गया। तीव्र ताप धुता शुभा, यह मिलने में बाधा थी। जितने भी पतियों से जिनका संग है उनको कृष्ण लीला में नहीं जा सकती हैं, प्रवेश नहीं कर सकती, राशि इत्यादि में दूर से कुछ लक्ष्य कर सकती हैं, सुन सकती हैं, ये सब अशुभ है। यदि होगा तो रस रसाभास हो जाएगा, रस विरुद्ध व्यापार हो जाएगा। इसलिए जिनको नहीं हुआ था पतियों के साथ में संकिंत विवाह हो गया है, परोढ़ा है, गोपियों का नित्य सिद्धाओं का संग हो गया, या कृष्ण ने अहत्य की कृपा करके कहीं डगर में उनको उनसे भेंट हो गई, तो बस उस लीला में प्रवेश, उनको रास में कोई नहीं रोका, जैसे नित्य सिद्धाओं को किसी ने नहीं रोका। और जिनमें अभी कुछ कमी है उनके लिए रोक लिया, जोग माया ने रोका, उनके पति लोग नहीं रोके, जोग माया ने पतियों के माध्यम से उनको रोक दिया, जो उनका कषाय था कुछ प्रेम में वो उस कषाय को दूर कर दिया। विरह तीव्र ताप, अब वो मरी नहीं, उनका ये सब दूर होने से जोग माया ने उनको क्या किया, पति के अलक्षित रूप में ही कपाट खुल गया, कपाट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जीवात्मा के लिए कई कपाट खोलने की जरूरत होती है, एकदम कांच में उसको यदि बंद कर दिया कहीं एक इतना भी छेद न रहे चारों तरफ कांच, तो तभी उसमें से निकल जाएगी। आत्मा इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बालाग्र सतभागस्य सद्धा कल्पितस्य च भागो जीव सभी गे सच अनंताय कल्पते। अनंत जीव है, एक नहीं है, सोहम नहीं, अनंत जीव है। तो इनके लिए कपाट में तो कहीं ना कहीं छिद्र तो होता है, उनको छिद्र की भी जरूरत नहीं, बस वो रात में पहले पहुंच गई, पीछे से और गोपियां पहुंची। तो इसलिए कहती हैं ये गोपियां घर में बैठी हुई भावना से देख रही हैं और कह रही हैं, ओ मैं जन्म लेती तो इन्हीं के कुल में जन्म लेती देवी बन करके, और हमारे पति वहां पर पतियों से तो संबंध है, तभी ये पति हमको ले जाते और बिना किसी बाधा के, कोई भी बाधा नहीं, कृष्ण का रूप तो दर्शन कर लेती, कुछ पुष्प तो उनके ऊपर में चढ़ा देती। हाय हाय, हम लोगों को ये सौभाग्य मिल गया, धन्य है ये देवियां। कहते कहते देखती हैं कुछ गायें हैं और उनके बछड़े हैं। देवियों की तो बात छोड़ो, ये तो बहुत बुद्धिमान है और इनको ये संभव है, किंतु जो पशु हैं, आज देखो तुम उनकी क्या दशा। गावस्य कृष्ण निर्मुक्त बेनु गीत पीयूष उद्भिद
क्या वो कृष्ण
निर्गत बेनु गीत पीयूष उद्भिद कर्ण पूत पिबंत शावास्त तन पय कौलस्मत बेन। तात्पर्य ये, गायों को तो देखो, इन गायों का कितना सौभाग्य, उनके बछड़ों का कितना सौभाग्य है। मधुर मधुर कृष्ण की बंसी बज रही है, भाव नेत्र से देख रही गायें जो जहां पर हैं, लाखों कोटि गायें, नंद महाराज की कितनी गायें 9 लाख, सिद्धांत की कितनी गैया हैं 11 लाख, उपानंद के बेटे जो हैं सुभद्र, उनकी भी ऐसी गायें हैं, कोटि कोटि गायें, अनगिनत गायें जो जहां पर हैं, बस जहां कृष्ण के मुख से वेणु की ध्वनि निकली वहीं पर खड़ी हो गई। कान को जो ऐसे कर रही थी उसको उठा दिया, कान को ऐसे ऐसे कर रही हैं, जिधर से वेणु की ध्वनि आ रही है उधर ही एकदम लगा दिया और खड़ी हो गई, आंख बंद कर दिया, एकदम स्तब्ध हो गई। उसके मुख में घासे जो चर रही थी जो ऊपर उठाया, अब उसको होश नहीं, ये गाय जब भीतर ले जाऊं या बाहर ला, बस जहां का तहां, बस एकदम पत्थर जैसी स्तब्ध हो गई। यही कृष्ण ले आके विचित्रता है, ऐसा सुंदर रूप है उनका, उनको देख करके चर स्थिर बन जाते हैं, जड़ जंगम बन जाते हैं और जंगम जड़ बन जाते हैं। आगे राजपंचाध्याय में ये सब आएगा, ये किस प्रकार से का स्त्रियं कल्पतायत वेणुगीत सम्मोहितार्चयिता न चलेत्रैश्चैलोकम्, इसमें सब आएगा। जड़ भी चेतन, चेतन जड़ हो जाता है, पर्वत गलने लगता है और नदियां जो चलने वाली है उसका पानी कैसा हो जाता है, बर्फ जैसा गल जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। इस तरह से कह रहे हैं, अरे गायों को तो देखो ये कितना इनका सौभाग्य है, कृष्ण की इस वेणु गीत को देख करके, और जहां है वहीं से कृष्ण का रूप भी देख रहे हैं। जो गायें पीछे हैं वो क्या कर रही, यही तो कृष्ण की अद्भुत लीला है, जो गुमाया ने कर दिया, जो गाय पीछे हैं, जो बाहर इधर में है उधर में है, जहां है आमने हैं सामने हैं बहुत दूर हैं, वो समझिए कृष्ण के निकट में, कृष्ण के मुखारविंद की तरफ में देख करते और ऐसे करते, एकदम मुग्ध हो गई, जड़वत हो गई। अरे जरा उनके बच्चों को तो देखो, छोटा सा भी बच्चा, बछड़ा या बछड़ी, और कृष्ण के इस वेणु गीत को और उनके सुंदर रूप को देखा, देखा के मुग्ध हो गया। बछड़ा क्या कर रहा था, मैया का दूध पी रहा था, मैया का दूध पीते पीते ही जब सुना, उसने भी कान खड़ा करके उधर से दोना बनाया, ऐसे बना देते हैं, और ऐसे एकदम लगाया और आंख बंद कर दी, अपने आप समाधिग्रस्त हो गया। और दूध जो लिया था वो गले में ही अटक गया, न भीतर जा सका न बाहर, उसको फुर्सत नहीं है, उसको होश नहीं है, वहीं पर रह गया। कौलास प्रतस्थु, बस कवल जो था वहीं पर रह गया। गायों का कवल घास का और इनका कवल किस चीज का, तृण का, दोनों का वहीं पर रह गया, शुद्ध बुद्ध नहीं गई। ये कृष्ण की का सुंदर रूप और उनकी वेणु की ध्वनि गोपियों ने देखा जहा है। देखो तो कितना सौभाग्य है उनका बछड़े का, छोटा सा बछड़ा और कृष्ण के प्रति इतना अनुराग, कृष्ण के निकट होकर के सुन रहा है, कृष्ण के रूप को देख रहा है। गैया का देखो, और कहां हम दुर्भागी, हमारे पति, हमारे सास ससुर, हमारे जेठ के बड़े बेटे या ननद, सभी हमारा घोर दिए। अनुमान लगाते हैं, जैसे देखा जब बैठे तो अनुमान लगाकर कहेंगे कहां से आ रही है, कहां गई थी, ताना मारेंगे। और देखा जो कहीं श्रृंगार कर रही है कुछ, कहां जा रही है, मिलने के लिए जा रही, ताना मारेंगे। अनुमान लगा करके विरोध करती हैं, कोई कारण नहीं तभी कारण का सृजन कर देती हैं मिलने में बाधा के लिए, झूठ मूठ को इस प्रकार से कर रही। यदि श्रृंगार कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो यह तुम्हारा श्रृंगार कैसे गड़बड़ हो गया, इस तरह से उनको बाधा देते हैं। इसलिए यदि हम लोग मर करके यदि गैया या बछड़ा बछड़ी हो जाते तो हमारा जीवन सौभाग्यमय होता। ये सब भी बहुत ऊपर के जो मादन मोदन जैसे हैं, ये सब उसमें है, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने सप्तम श्लोक में बतलाया, चैतन्य क्या है, जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्याइम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। अब बतलाओ कि जैसे ये महाप्रभु जी कर रहे हैं और गोपियों का विरह देखो तो कैसा स्वाभाविक रूप में, हम लोग को कभी भजन करते करते ऐसा भाव आता है कि हमारा जीवन वृथा गया। हम वृंदावन में किमप गुलम लता औषधि नाम हो जाते, कोई एक तीर्ण गुलम लता हो जाते, एक वृक्ष भी हो जाते, वहां का एक पशु पक्षी भी हो जाते। क्यों, जत्किंचित तृण गुल्म की कटमुखम गोष्ठे समस्तं हि तत् सर्वानंद मुकुंद दैतं लीलानुकूलं परम शास्त्रे मुहु मुहु निशंकितं ज्ञानतया ब्रह्मादेरपि सस्मिहं ततो सर्वं मया इदं वन्दते। वृंदावन के ऐसा कोई भी नहीं है जो कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता, और सभी लोग कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है और कृष्ण के लीला के अनुकूल है, सहायक है। एक उदाहरण देता हूं ना, राधा जी ने मन किया कृष्ण से गोवर्धन में बैठ रही थी, तमक करके वहां से उठी और चलने लगी। कृष्ण बहुत मना रहे हैं, ललिता जी सभी लोग मना रहे हैं, आज वैसे तमकी जो कृष्ण के तरफ में वो फिर करके नहीं देख रहे, चली जा रही है। बहुत कृष्ण ने चेष्टा किया, जब नहीं मानी तो कृष्ण उदास होकर के बैठ गए। इतने में आगे जब बढ़ी एक कुंज से एक बड़ा विषधर काला सर्प निकला और राधा जी को उधर से आ रहे हैं और फौंस ऐसे जो किया बस सन्न प्राण लगा और दौड़ी पीछे की तरफ में लपक करके कृष्ण की गोदी में गिर गई। लीला के अनुकूल हुआ ना, मिलान करा दिया, जो ललिता नहीं कर सकी, बंसी नहीं, थक गई हार गई, जो नहीं करा सकी कृष्ण हार गए, सुबल सिद्धाम हार गए। और वो काम किसने किया, ये देखो। इसलिए मैं कभी भी सर्प भी हो, कीकट बिच्छू इत्यादि कुछ भी हो तो ब्रज में जन्म लो हम, यदि पहाड़ के रूप में निकले तो हो तो गोवर्धन में, पानी हो तो जमुना के में पानी हो करके रहे, कोई जीव जंतु हो जलचर हो तो जमुना में, स्थलचर हो तो इस तरह से गोवर्धन के गिरिराज का पाहन बनूं, पाहन माने पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं, इस तरह से वो करता है। ऐसे ही गोपियां कह रही हैं यदि प्रेम हो तो इन गायों के समान और बछड़ों के समान, कहते ही ऐसा भी हमारी योग्यता नहीं ऐसा कर, अरे इनसे जो कम है ये सुप पक्षी कोयल मैना तोता और सूक और सारी पपी है इत्यादि, ये भी इनकी तो बात छोड़ो, ये तो बहुत चतुर हैं। गायें तो मनुष्य के समान के भावों को बुझने वाली होती हैं, मनुष्यों के निकट होती हैं। अरे दूर जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं इनका कैसा सौभाग्य है, कहते अहो बतांग बिहगा, अपने सखी को कह रही हैं क्या
अम्ब,
ये किस लिए कह रही हैं? तो ये जसोदा मैया से शायद बातचीत कर रही हैं, इसलिए जसोदा मैया को ये बतला रही हैं जो देखो ये सब वेणु गीत है जो अपनी मैया को सुना रहे हैं, या वैसे ही मैया अपनी अपनी मैया को सुना रहे। नहीं नहीं नहीं, ये किस लिए कर रही हैं? कभी बाप है ना अपने बेटे, अरे भाई देखो ना यहां जा रहा था ऐसा, अरे भाई क्यों कह दिया है? अरे बहनों, किसको भी वहां पर संबोधन यहां पर है, ऐसे एकदम भाव में विभोर हो गई अपने सखी को, अहो बताम्ब, अरे मैयारी है, मैयारी कहते हैं ना किसी को, कोई कोई ऐसी कोई बात हो गई, अरे मैयारी मैं क्या कहूं। तो ऐसे ही हम मैयारी कह रही हैं जसोदा मैया को, नहीं कहने तो ये रसाभास हो जाएगा, उलट जाएगा मामला। अहो बतांग बिहगा मुनयो बनस्मी, ओ इस वृंदावन में जो बिहग हैं पशु पक्षी हैं ये साधारण नहीं है, मुनयो मुनि लोग हैं, ये मुनि लोग हैं, साधारण नहीं है इस वृंदावन में, और जगह में चिड़िया हैं। कैसे समझेगी वो, कहे सखी कैसे समझी, अरे इतना नहीं समझ सकती मैं, अरे देखते नहीं हो ये कैसे ये हैं। अहो बताम्ब बिहगा मुनयो बनस्मि, कृष्णे चितम, क्या है श्लोक, कल्बेणु गीतम आरुह्य द्रुमभुजान, आरुह्य द्रुमभुजान, देखो देखो तो श्लोक द्रुमभुजान मुझे रोज याद है, रुचिर प्रमाणन श्रीमंत मिलित दृशो विगतान्यवाच करें क्या। ओहो बतांग बिहगा मुने ओ बनस्मिन, कृष्णे चितम तदुदितम कलो वेणु गीतम आरुह्य द्रुमभुजान रुचिर प्रमाणन श्रीमंत मिलित दृशो विगतान्यवाच। अरे मैयारी देखो ना, इस बिहग के वृंदावन के जितने पशु पक्षी पशु पक्षी इत्यादि हैं ये मुनि लोग हैं जो कि वेद की शाखाओं का आलंबन करके बैठे हुए हैं। मुनि लोग क्या करते हैं, वेद की एक एक शाखाएं होती हैं, 1180 ना कितनी शाखाएं हैं, उसमें गोपाल तापनी इत्यादि एक तरह की शाखा है, छंदोग्य इत्यादि एक शाखा है, उसमें कौन वेद उपनिषदों में
गोपाल तापनी
ये साधारण
तो
मंडूक मांडुक इत्यादि जो है एक तरह की, ईस केन कठ इत्यादि गोपाल तापनी इत्यादि हैं, ये सब ये तापनियां भी हैं। इसमें से ये मुनि लोग जो वृंदावन वाले हैं ये कैसे हैं, मुनि एक होते हैं ध्यानस्थ समाधि ग्रस्त, समाधि में हो जाते कृष्ण लीलाओं का चिंतन करते हुए, वाणी रहते हुए वाणी का प्रयोग नहीं होता है, आंख रहते हुए आंख का प्रयोग नहीं। तो ये लोग धन्य हैं कि कैसे हैं, हम लोग ऐसा मुनि होना नहीं चाहेंगे, ऐसे मुनियों में हमारी प्रीति नहीं है जो समाधि ग्रस्त होकर के आंखों को भी बंद किए हुए कोई भी स्पंदन नहीं है अंगों में कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहे, ये कैसे हैं। क्वेल कुहकती है, ये इस वेद की शाखा में है, ये कौन सी शाखा है, भागवत की शाखा, वो लोग तो उपनिषद वाली शाखा पर बैठे हैं, कोई कर्म की शाखा पर, कोई कुछ तरह तरह की शाखाओं पर बैठे हैं, किंतु वृंदावन वाले जो ये पशु हैं शूक और सारी दोनों में द्वंद लग जाता है। शुक कहता है हमारे कृष्ण बड़े सुंदर हैं, तो सारी कहती है जब तक कृष्ण के बाएं तरफ में राधा नहीं हो तब तक वो सुंदर नहीं है, जब वो बाएं तरफ में है तभी सुंदर है। कहते कृष्ण मदन मोहन है, अरे मदन बात मोहन की बात रखो, राधा जी क्या है, मदन मोहन मोहिनी है, और नहीं तो केवल राधा के भीन केवल मदन मोहित है। कौन सा मदन में मोहित है, गोपियों के प्रति जो मदन का भाव उसके द्वारा ये मोहित है। इस तरह से दोनों में सुख और सारी में द्वंद चल रहा है वृंदावन की, तो ये देख रही है क्या, ये जो है अवतानी समस्त ये समस्त विषयों से विरक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, वाणी से श्रीमद् भागवत को प्रकाश किया, ये मौन नहीं रहेंगे, ये भागवत की शाखा पर बैठे हैं। व्यास जी जो हैं, नारद जी हैं, ये कौन सी शाखा पर, भागवत की शाखा पर बैठे हैं। ये लोग ऐसे हैं, कोयल है, तोता है, मैना है, सुखसारी है, पपीहे हैं, मधुर सप्त से कृष्ण का को रुझाते हैं, इसलिए ये लोग कीर्तन प्रधान हैं, अपनी वाणी को भी इसमें लगाए हैं, अपनी अंगों से सेवा करते हैं, आंखों से कृष्ण का रूप देखते हैं। आज कृष्ण की यह कल ध्वनि को सुन करके अहो बतांग दिहगा मुनयो बनस्मिन, ये क्या कर रहे हैं, विगतान्न वाच और कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस कृष्ण कृष्ण राधे राधे कर रहे हैं और उनकी लीलाओं का गायन करते हैं। सुख कहता है अरे रसिक शिरोमणि, अब आपको सोना उचित नहीं, आप तो स्वयं चतुर हैं, अब तो सूर्योदय होना जा रहा है, अब तो जरा उठिए। प्रबोध देता है, विचक्षण और कुछ खाता है, साड़ियों में तीक्ष्ण जी हैं, सुभा जी हैं, और एक और तो ये सब राधा जी को प्रबोधन कर रही हैं। तो बतलाओ तो ये साधारण मुनि हैं, इसलिए यहां पर कर रहे हैं, सब बातों को छोड़ करके कृष्ण का रूप दर्शन कर रहे हैं ये, और उनकी मोहिनी वेणु गीत का ये सुन रहे हैं। ये बेटी जो परिपक्व जो ये निगम कल्प स्वरूप का ये जो फल है, इसके शाखा पर बैठे हुए ये लोग देख रहे हैं। यदि हमारा जन्म हो अगले में तो हम लोग ऐसे ही होकर के आए, मयूर नृत्य कर रहे हैं ना, और ये सब देख रहे हैं, बीच बीच में ये लोग भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का रूप देख करके इनका जीवन सार्थक हो जाता है, ऐसे हम लोगों का भी जीवन सार्थक। अरे इन ये तो चलने वाले प्राणी हैं, हम तो देख रहे हैं, ये बातचीत भी करते हैं बोलते हैं, अरे ये नदी को तो देखो, यमुना को, पावन सरोवर को तो देखो, और मानसी गंगा को तो देखो, ये कैसे करती हैं, इनकी धारा उलट जाती है। नद्या तदुपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारी गृहंति पाद जगलम कमोलोपा। अरे इस नदी को तो देखो, ये कृष्ण की कामिनी है, नदी नहीं है ये, मानसिंह गंगा क्या, कृष्ण की प्यारी कोई है ये। उसी तरह से जितने वृंदावन के ये सब हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, ये सब कृष्ण की बड़ी प्यारी है, इसलिए नदस्तत उपधार्य मुकुंद गीत उपधार्य, विशेष रूप से निकट से यह नदी जमुना के किनारे खड़े होकर के उपवन में कदम्ब वृक्ष के नीचे कदम्ब पर सहारा लिए हुए त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए अधरपन मुरली वेणु को रख करके बजा रहे हैं। जिस समय उन्होंने वेणु से गान किया, जमुना जी जा रही थी, रुक गई धारा, लौटने लगी नीचे से, जो कि धारा उनका प्रयाग की तरफ में जा रहा था, वृंदावन से निकल करके इधर वो बजाया उन्होंने यहां पर बंसी बट पर, जो मथुरा की तरफ आ रहा था वो मथुरा से लौट गया वो धारा प्रवाह, और चला किधर में, वृंदावन के, तो यहां पर कृष्ण निकट में पहुंच गया और अपने कानों में उसने सुना और सामने कृष्ण को देखा, देख करके एकदम मुग्ध हो गई यमुना जी, हृदय के आवेग को रोक नहीं सकी, उनका जो उनकी जो धारा उनका जो धारा प्रवाह था वो रुक गया बीच में। कैसे रुक गया, ऊपर से तो आ रहा था धारा, आ रही थी, और नीचे वाले इधर गई, दोनों में रुक गई। जब इधर से सामने से भी मथुरा में जब सीढ़ी से उतरते हैं हजारों आदमी, اور نیچے سے جب چڑھتے ہیں بس راستہ نہیں ملتا, بس سب لوگ رک جاتے ہیں. ایسے جمنا کی دھارا نیچے والی لوٹ آئی اور اوپر والی آنے لگی, دونوں مل کر کے راستہ نہیں ہے جو ادھر ادھر جائیں, دونوں رک گئی. تب انہوں نے کیا کیا, دھارا پرواہ رک جانے سے کیا ہوا, اتنی زور سے اوپر سے دھارا آ رہی ہے ادھر سے آ رہی, بس گھومنے لگ گئی ادھر کا ایسے ایسے پانی پرواہ. ارے یہ نہیں, کام سے ان کا پرواہ ایسے ہو گیا, ہرد ایک دم ناچ اٹھا آویگ سے. ایسا ہونے پر انہوں نے کیا کیا, اپنے آویگ کو کمل لیا, کمل ہاتھوں میں لے لیا اور کرشن کے چرنوں سے چڑھتے ہوئے وہ کہاں تک پہنچی, ایک دم بستک تھل تک پہنچی. کس لیے, آلنگن کرنے کے لیے کرشن کو, اپنے پریتم کو. یہ نبی نہیں ہے, ان کی پریتما ہے, اس لیے جمنا جی کو پٹرانی بھی کہتے ہیں. پٹرانی کہنے سے ان کو کچھ کم کر دینا, پریتی کہنا ہی ٹھیک ہے. وہ پٹرانی ہوں گی کالندی دوارکا میں, یہاں پر پٹرانی کہنا کوئی بھی شکی نہیں چاہتی یہ ہم پٹرانی ہیں. اس لیے وہ اوپر اٹھی آلنگن کیا, کنتو کرشنا بجانے میں بینو گیت میں اتنے تنمے تھے جو ان کو دھیان نہیں رہا کہ کون آلنگن کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو بڑی لجت ہوئی, یہ کرشن کی اپیکشا کچھ نہیں ہے, کچھ وہ ان کا جو کام بھاؤ تھا شانت ہو گیا اور دھیرے دھیرے نیچے کرائی اتر کر کے کیا کیا, اپنے پرواہ روپی اپنی ترنگوں روپی ہاتھوں میں کر کملوں میں وہ کمل کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کرشن کے چرنوں میں اپہار دے کر کے کہا یہی ہمارے لیے بہت ہے, وہ میرے لیے سمبھو نہیں آلنگن کرنا. ارے دیکھو تو ندیوں کا کیا سوبھاؤ, آگے جدی مری ہم تو ہم پرارتھنا کرتی ہیں اس جمنا سے ہی کہ ہم اس کا پانی بن کر کے آئیں, اس کی دھارا پرواہ بن کر کے, ہم بھی ندی ہوں مانسی گنگا ہو. ابھی آپ لوگ جانتے ہوں گے اس پار میں متھرا کے لوہ بن, وہاں پر ایک سروور ہے لوہ بن میں, وہ بھی ان کے لیلا کا استھل ہے کرشن کا, وہاں پر نوکا بہار اتیادی لیلائیں ہوتی ہیں. اسی سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوپیاں پرارتھنا کر رہی ہیں جدی ہم مریں تو اس جنم میں تو سوبھاگیہ نہیں جو کمل کا اپہار لے کے ان کے چرنوں میں دیں اور ان کو آلنگن کر لیں. ہماری نندے اور سانسیں ہمارے پتی اس کو سن کر کے ہی دور سے گھر سے باہر کر دیں گے, جانے نہیں دیں گے, اس لیے ہم لوگ ایسا چاہتے ہیں. اتنے میں انہوں نے دیکھا کیا, ارے آکاش میں میگھ گھوم رہے ہیں, کہا جی جدی ہو تو میں میگھ ہوں. ارے جمنا میں تو پرواہ ہے, جمنا میں بھی ادھشٹھاتری دیوتا ہیں, ان میگھوں میں کیا دیکھو تو ان میگھوں کو یہ کیا کرے, دشتا تپے پرج پسون سہ رام گو پائی, رام گو پائی کیا ہے شلوک, سنچار انتم انبیڑ ادیر انتم پریم پربدھ ادتا کسم آولی بھی سکھ بدھات بپوسا آتم. دیکھو تو کرشن سے ان کی کتنی مترتا ہے, کرشن کے لیے کتنا پرانو سرگ ہے ان کا. سخی میں جدی ہوں تو یہ میگھ ہی بنی. دیکھو نا کرشن کا ان کا روپ ملتا ہے نا, سخا ہے نا یہ, کرشن کے لیے اپنے تن دھن من بچن سب کو انہوں نے ارپت کر رکھا ہے. آج یہ آکاش مارگ میں جا کر گرمی کا دن اور یہ اوپر سے میگھ چھتا بن کر کے اوپر سے کسماولی کا برسن کر رہے ہیں, بہت دھیرے دھیرے گرجن کر رہا, آنند کے مارے گرجن کر رہا. یہ گرجن نہیں بلکہ یہ اسفٹ دھنی ہے, کلت دھنی ان کی, میں گرجن کر رہا ہے. کرشن جیسا کرشن کی چنتا کرتے 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 یہ بھی شیام بن گیا ہے اور اوپر سے پشپ کی برشتی کر رہا ہے. جدھر کرشن جاتے ہیں گوچارن کرنے کے لیے بس وہ یہ سرکتا ہوا ادھر ہی جاتا ہے اوپر سے چھاتا بن کر کے, ان کو کبھی دھوپ لگنے ہی نہیں جاتا. دیکھو تم اتنا ایسا, او ہم لوگ بھی کبھی میگھ ہو سکتی ہیں. گائے تو کچھ سجیو ہیں, اسے یہ پشو پکی بھی میں کچھ ہے, ندی میں بھی کچھ سجیوتا ہے, کنتو دیکھو تو میگھ, اسے جدی ہم لوگ میگھ کبھی ہو سکے اور کرشن کی سیوا جدی میگھ جیسا بھی ہم لوگوں کا جیون سفل ہو جائے گا. देखते देखते ही उन्होंने देखा भाव नेत्र से ये गोवर्धन में ये कृष्ण पहुंच गए और देख करके क्या कहा, क्या एक घंटा हो गया। अब यही श्लोक का करके खत्म कर देकर के, अरे देखो तो ये भील कन्याएं जो हैं, पुलिंदियां हैं, पहाड़ी जंगली औरतें हैं जो कपड़ा पहनना भी नहीं जानती और लकड़ी बिनने के लिए या सूखे कंडे को बिनने के लिए ये जंगल में आई हैं। देखो तो कृष्ण के प्रति इनका कितना सुंदर भाव। अब इस बात पुलिंद ही आना चाहिए, इसे कहते पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदार्थ चरा गए। पुलिंदियों का जन्म लेना ही पूर्ण रूप से सार्थक है। जितना अभी तक बतलाया अपने भावों को छिपा रही थी किंतु अब छिपा नहीं सकी उनका भाव। अभी तक अहोच्छा भाव से प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को छिपा रही हैं किंतु यहां पर अब अपने आप व्यक्त अब रह नहीं सकी। कुछ समझ जाती था उसमें आई भील कन्याओं को देख करके। कृष्ण से संबंध नहीं, कृष्ण की किसी वस्तु से भी संबंध नहीं और कैसे इनको प्रेम हो रहा है। उन्होंने देखा जी जंगल में गिरिराज की तराई में शानू प्रदेश में घासें हैं सवेरे का समय और उन घासों पर ओस बंदू उसमें लगे हुए हैं मोती जैसे झलक रहे और उन वो मोती कैसे है रंगीन लाल लाल है। ये लाल लाल कैसे हो गए कृष्ण के वो कुमकुम लगा पाते। अरे ये तो कुमकुम, ये कुमकुम कहां से आया। गोपियां देख रही हैं वो पुलिंदी नहीं जानती किंतु ये भाव नेत्र से देख रहे वो कुमकुम जो है लाल लाल मोती बेशकीमती मोतिया है। उसको देखा, देख करके एकदम मुग्ध हो गई, हृदय में ताप हुआ। बस उनको बटोरने लगी हाथों से और हाथ में जो लालाई आई कुमकुम की अपने मुखारविंद में अपने सारे अंगों में उसे लपेट लिया। एकदम तन्मय हो गई कृष्ण के प्रेम में, शुद्ध बुद्ध खो गई और एकदम मोहित मुग्ध हो गई। कहा ये कहां का कैसे ये कहां से आया कुमकुम, तो उसी के लिए बतला रहे हैं कौन, गोपियां बतला रही हैं भाव में से। पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदाब जराग, उरुगाय उरुगाय माने क्या, उरु जो गान करते हैं बहुत मीठे सबसे, ये जो कृष्ण है उरुगाय पदाब्ज राग जिनको उत्तम श्लोकों में गाया जाता है किंतु ये उतना ठीक नहीं। गोपियां उरुगायती कृष्ण के संबंध में जो गान करती है वंदे नंद ब्रजेशी नाम पादुरेणुम अभिक्षणा जातांग हरि कथोद गीत पुनात भुवनत्रा, तो इसलिए उरुगाय कृष्ण के लिए कह रहे हैं। पादाब्ज राग उनके चरण कमलों में जो ये राग है पादाब्ज, ये कौन कुमकुम है, तो कृष्ण के चरणों में कुमकुम लगाता है कोई, तो ये कहां से लग गया, ये कहां से लग गया। कहते हैं कि ये लग गया, कैसे लग गया धीर व्यक्ति इसको समझ, ये लग गया गोपियां अपने अंगों में कुमकुम लगाती हैं। अब ये कृष्ण से जब मिलती हैं तत्ते सुजात चरणाम बरु हम स्तनेश भीता सनई प्रियदी दधी मही कर। उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों को धारण किया और वो कुमकुम उसमें लगा, वह कुमकुम लगा घास में और घास से वो कुमकुम को अपने हाथों में स्पर्श करके लगा रही। इतना प्रेम, कृष्ण से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं और ये जो कह रही है उसी का कुमकुम वो लगा कृष्ण के चरणों में और कृष्ण के चरणों से लगा घास में और घास से पानी मिश्रित होकर के उसने उठाया लगाया। इतना दूर का संबंध गोपिया ने किया, जन्म हमारा हो तो ये पुलिंदी करने के रूप में, ऐसा सौभाग्य। किंतु वो नहीं जानते ये हमारे ही अंगराज हैं। ये कृष्ण बड़ी सावधानी से उसको रखते हैं, यहां तक कि पीताम्बर से पूछ करके उस कुमकुम को अपने पीताम्बर में रखते हैं ऐसे चीज को। तो ये धन्य है पुलिंद कन्या, इन्हीं का जीवन पूर्ण है, कृतार्थ पूर्ण माने यहां पर कृतार्थ है इनका जीवन। देखते देखते ही गोवर्धन पर इनकी नजर आई। अरे देखो तो गोवर्धन गिरिराज को, माने इनसे भी ये गिरिराज गोवर्धन को देखता है कि ये इसके लिए संभव है, किंतु पत्थर को कहां से संभव है। गिरिराज को देखो, हरिदास वर्ज, क्या है वो, हंतायम अद्रबला हरिदास वर्ज, जदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनोति सह गो गणयोस्तयोजत जत्पानी यसु यवस कंदर कंदम। गिरिराज जी का स्वभाव देखो, ये हरिदास वर्ज, एक हरिदास है युधिष्ठिर महाराज, दूसरे हरिदास हैं उद्धव जी, वह हरिदास वर हैं, वह है हरिदास, ये हरिदास वर कौन, उद्धव, और ये गिरिराज जी क्या हैं, हरिदास वर। इनका जैसा किसी का सौभाग्य नहीं है, जो कि कृष्ण आते ही उनको पानी देते हैं, आचमन करने के लिए पानी, पैरों को धुलाने के लिए पानी देते हैं, मानसी गंगा, मानसी गंगा है, कुसुम, गोविंद कुंड, ये नवल कुंड, अस्परा कुंड, उद्धव कुंड, सुरभि कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड। देखो तो ये गिरिराज की देन है। यही नहीं, अपने पानी से सुशीतल उस भूमि को करते हैं, जिससे सुंदर सुंदर हरी हरी घासें आती हैं, जिसमें गायें और बछड़े खाते, कृष्ण के सखा है ना, कृष्ण ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे, पहले उनको परिकरों को प्रसन्न करो। गिरिराज यही करते, बड़े बुद्धिमान हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के सखाओं को खाने के लिए क्या करते हैं, सुंदर सुंदर केले, अमरूद, आम, अंगूर, नाशपाती, यहाँ तक कि मधु इत्यादि जो छत्र में हुआ करते हैं। इस तरह से पानी असु यवस कंदर कंद मूलई, इन सबको कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं।